लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने जीवन में अपने रूप और रंग में एक चमक की चाह रखते हैं। इसके लिए हम में से ना जाने कितने संचार माध्यमों में विज्ञापनों से प्रभावित कई तरह की बाह्य रूप रंग में निखार की चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपने में कितनी मेहनत करते हैं। यह इसलिए कि बेशक हम में से हर कोई अपने में सुंदर और अच्छा दिखने की चाह रखता है, जो उचित और आवश्यक भी है। इसके संबंध में हम किसी को कोई दोष या किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर से मिली हमारी खूबसूरती और उसे बनाए रखने के द्वारा ही हम अपने सृजनहार ईश्वर की महिमा, स्तुति और गुणगान करते हैं। श्रोताओ, चालीसा के दूसरे रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में हमारे लिए मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। हमें उनके मुखमंडल में हुए रूपांतरण की बात कही जाती है। आइए हम सुसमाचार में ईश वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि वे कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में चमक आती है। वे कौन सी चीजें हैं जो हमारे मुख मंडल को तेजस्वी बना देती हैं? क्या हमने कभी अपने जीवन को दिव्य ईश्वरीय आभा से सुशोभित और चमकता हुआ अनुभव किया है?
यीशु पेत्रुस, योहान और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुख मंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेत्रुस और उनके साथी जो ऊंग रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम तीन तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा आने वाली दिव्य चमक को देखने, जानने और समझने में मदद करें, जिससे हम अपने को उनके वचनों से सदैव संयुक्त करने में उत्साहित रहें, क्योंकि जीवन की चमक और खूबसूरती भौतिक चीजों के उपयोग में नहीं बल्कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक बातों से होती है, जो ईश्वर के संग हमारे संबंध को व्यक्त करता है। श्रोताओं, उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए विश्वास के पिता इब्राहिम को यहवे में मिलने वाली खूबसूरती का जिक्र करता है। इब्राहिम को ईश्वर उनके विश्वास और उनकी आज्ञाकारिता के कारण अपने द्वारा बनाए गए सुंदर आकाश और तारों की ओर देखने का आह्वान करते और उसकी संतति को उन्हें तारों की तरह असंख्य बना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। इब्राहिम अपने ईश्वर की बातों पर विश्वास करता और उसके लिए वह ईश्वर की निगाहों में धार्मिक माना जाता है। श्रोताओं, पहले पाठ के आधार पर यदि हम अपने जीवन में चिंतन करें तो हम पाएंगे कि ईश्वर ने हमें भी अब्राहम की भांति असंख्य सुंदर वरदानों से भर दिया है, जिसका हिसाब हम नहीं कर सकते हैं। यह हमें अपने आप से बाहर निकलकर उन चीजों को देखने का आह्वान करता है जिसे ईश्वर ने हमारे लिए बनाया और दिया है। वे निश्चित ही हमारे लिए आकाश के तारों की भांति अनगिनत और सुंदर हैं, जो हमारे जीवन को सुंदर और अद्वितीय बनाते हैं। श्रोताओं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वर में मिली उस सुंदरता का बखान करता है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। फिलिपी समुदाय के लिए कहे गए संत पौलुस के ये वचन हमारे लिए भी सटीक बैठते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम वहां से आने वाले मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की राह देखते हैं। वे प्रभु हमारे बीच में आते और अपने पुनरुत्थान की शक्ति से हमारे मरणशील शरीर को अपने महिमामय शरीर के अनुरूप रूपांतरित करते हैं। संत पौलुस इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि हम में से कुछ ऐसे हैं जो जीवन की तुच्छ बातों अर्थात भौतिक चीजों तक ही अपने को सीमित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन की सुंदरता और मधुरता जिसे देखने और अनुभव करने हेतु हम बनाए गए हैं वे हमसे दूर चली जाती हैं। हम अपने जीवन की खूबसूरती और अपने में अद्वितीय होने का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने जीवन को भौतिक चीजों तक ही सीमित कर लेते हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमें इसके लिए समाधान प्रस्तुत करता है जिसे हम पर्वत के ऊपर यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण में पाते हैं। यीशु का रूपांतरण अपने चेलों की उपस्थिति में उस समय होता है जब वे वहां पर्वत के ऊपर अपने पिता से प्रार्थना कर रहे होते हैं। अतः पर्वत के परिदृश्य में हम तीन बातों को पाते हैं जो हमें अपने जीवन में चिंतन करने को अग्रसर करता है। पहला, पर्वत जो जमीन से ऊपर उठा हुआ एक स्तर है, अतः यह हमें दैनिक जीवन में अपने सामान्य बातों और घटनाओं से थोड़ा ऊपर उठने की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। हम अपने भौतिक चीजों में खोए रहने हेतु नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने को बनाए गए हैं। दूसरा, ईश्वर के संग हमारा संबंध, यह हमारे ऊपर उठने के भाव को व्यक्त करता है जो हमारे जीवन में प्रार्थना के माध्यम होता है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर के संग अपने मेल को पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर की ओर से आने वाली कृपा और दिव्य शक्ति न केवल हमारे मन, दिल और हृदय को परिवर्तित करती है बल्कि इसके द्वारा हमारा पूरा व्यक्तित्व और स्वरूप ही बदल जाता है। तीसरा, यीशु का रूपांतरण, यह हमारे लिए न केवल उनके पुनरुत्थान की बात कहती है बल्कि यह भविष्य में उनकी तरह हमारे पुनर्जीवित होने के रहस्य को व्यक्त करता है। यह हमें इस बात की सत्यता से रूबरू कराती है कि हमारा निवास यहाँ का नहीं बल्कि वहाँ उस स्वर्ग का है जहाँ पहले ही नबी मूसा और इलियस अपने कार्यों के निर्वाहन उपरांत पहुँच गए हैं। श्रोताओं, चालीसा का काल हमारे लिए वह अवसर प्रदान करता है जहां हम अपने जीवन का अवलोकन करते हुए अपने में परिवर्तन लाने को बुलाए जाते हैं। आइए हम यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने दुख भोग के रहस्य को समझने की कृपा प्रदान करें जिससे हम उस पर चिंतन करते हुए अपने को उनके पुनरुत्थान में सहभागी होने हेतु तैयार कर सकें, जो सही अर्थ में हमारे लिए जीवन की खूबसूरती लाती है।
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस के स्थिर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम को मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं की। इससे एक सकारात्मक संकेत मानते हुए वैटिकन प्रेस कार्यालय ने सूचित किया है कि यह चिकित्सा अपडेट अब कम बार जारी किए जाएंगे। शुक्रवार शाम को एक नया मेडिकल अपडेट की उम्मीद थी, लेकिन नहीं किया गया। इस पर वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा कि पोप की स्थिर स्थिति को देखते हुए बुलेटिन कम बार जारी किए जाएंगे। साथ ही संत पापा की रात कैसी बीती, इस पर दिया जाने वाला सुबह का दैनिक अपडेट भी अब जारी नहीं किया जाएगा। पोप के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुधार लगातार जारी है, समय की आवश्यकता है। शुक्रवार को संत पापा पूरे दिन प्रार्थना में व्यतीत किए और उन्होंने श्वसन और फिजियोथेरापी भी जारी रखी। पूर्वी कलीसियाओं से इस सप्ताह के मुख्य समाचार हैं। कलीसियाओं ने सीरिया में शांति की अपील की। यरूशलेम में 40 अकाल का प्रथम शनिवार मनाया गया और बेरूत में फादर जीन डुक्रुएट को याद किया गया। देश में हिंसा की लहर के चलते सीरिया की मुख्य कलीसियाओं अर्थात ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, मेलकाइट और सीरियक ऑर्थोडॉक्स के प्राधिधर्माध्यक्षों ने मेल मिलाप के पक्ष में एक तत्काल अपील शुरू की है। मार्च की शुरुआत में तटीय शहरों में अलावी मिलिशिया और अंतरिम सरकारी बलों के बीच झड़पें हुई। जवाबी हमले अलावी नागरिकों पर किए गए। सीरिया मानवाधिकार पर्यवेक्षक के अनुसार इन नरसंहारों में 1,300 से अधिक अलावी नागरिक, 270 लड़ाके और लगभग 10 ख्रिस्ते मारे गए। 40 अकाल के प्रथम शनिवार को पौत्र कब्र महागिरजा घर में कलीसियाओं के प्रमुखों ने एक समारोह जुलूस का आयोजन किया। यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने जुलूस की शुरुआत की। उसके बाद ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफिलोस तृतीय और पूर्वी कलीसियाओं के अन्य धर्माध्यक्षों ने जुलूस निकाला और बेरूत में सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। सोमवार 10 मार्च की शाम को लेबनानी गृह युद्ध के दौरान संस्थान के रेक्टर रहे फादर जीन डुक्रेट के सम्मान में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसने प्रतिभागियों को आशा का संदेश दिया। हमास ने कहा है कि वह एक अमेरिकी इसराइली दोहरी नागरिकता वाले नागरिक को रिहा करेगा, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह गजा में बंधक बनाया गया आखिरी जीवित अमेरिकी बंधक है। मध्यस्थों से युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत फिर से शुरू करने के प्रस्ताव मिलने के बाद हमास ने यह बात कही। इसराइली कैबिनेट शनिवार रात को कतर में गजा युद्ध विराम वार्ता दल की विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी, जहां अमेरिकी मध्यस्थ हमास और इसराइल के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं।
शुक्रवार की सुबह परम धर्म पीठ से मान्यता प्राप्त राजनयिक दल के सदस्य और राजदूत प्रेरितिक भवन के संत पॉल चैपल में पवित्र मिसा समारोह में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए, जहां उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने पवित्र मिसा का अनुष्ठान किया। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, हम आज सुबह संत पापा के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने हेतु एकत्रित हुए हैं, ताकि वे ठीक हो जाएं और जल्द ही हमारे बीच लौट आएं। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष बनने की 12वीं वर्षगांठ को भी याद किया, जो गुरुवार को रोम के जमेली अस्पताल में द्विपक्षीय निमोनिया से उबरने के दौरान हुई थी। इसके बाद कार्डिनल पारोलिन ने प्रार्थना के सार और उद्देश्य पर विचार किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी इच्छाओं के बारे में उन्हें सूचित करने से कहीं अधिक हमारे दिलों को ईश्वर के लिए खोलने के बारे में है, जिन्हें वे पहले ही जानते हैं। प्रार्थना वह कुंजी है जो प्रभु के दिल को खोलती है या हमारे अपने दिलों को उनके वचन को सुनने के लिए खोलती है। उन्होंने राजनयिकों को येसु के निमंत्रण की याद दिलाई कि हम पूजा अर्चना में शामिल होने से पहले सुलह की तलाश करें। ईश्वर कभी भी हमें असंभव कार्य करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि हमेशा हमें अपने वचन को पूरा करने की कृपा देते हैं। कार्डिनल पारोलिन ने कहा, प्रभु के वचन से शुद्ध होकर संत पापा के स्वास्थ्य के लिए हमारी प्रार्थना नई ताकत प्राप्त करती है, जो सबका भला करने वाले ईश्वर के प्रति आत्मविश्वास के साथ बढ़ती है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार 14 मार्च को वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन से फोन पर बातें की। फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य होने की कामना की, यूक्रेनी लोगों के लिए परम धर्म पीठ के नैतिक समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और रूस द्वारा अवैध रूप से निर्वासित और विस्थापित बच्चों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए परम धर्म पीठ के प्रयासों को स्वीकार किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कार्डिनल पारोलिन के साथ बातचीत की खबर साझा की। बाद में पत्रकारों के साथ अपनी दैनिक ब्रीफिंग के दौरान वाटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने बातचीत की पुष्टि की। उधर यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि इस बारे में जल्दी ही अच्छी खबर आ सकती है। क्रेमलिन ने खुद को सतर्क रूप से आशावादी घोषित किया है और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बातचीत की बात कही है, जिससे शांति को और करीब लाया जा सके। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छी तरह से चल रही है। यह बहुत जटिल स्थिति है। हमारा यूक्रेनी पक्ष के साथ युद्ध विराम समझौता है और हम रूस के साथ भी उसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब में बातचीत की गई युद्ध विराम योजना को स्वीकार कर लिया है, लेकिन रूस पर रचनात्मक होने के लिए दबाव डालना अभी भी आवश्यक है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।